ओम शांति। सभी बाबा के भाग्यवान बच्चे, विशेष भाग्य विधाता की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि में तपस्या करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बाबा के घर में सभी कर रहे होंगे। ये भी एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस ड्रामानुसार सबको मिल रहा है, जो सभी बाबा के घर में आकर 3-4 दिन बहुत अच्छे एकांतवास तपस्या करते हैं और इसके अंतर्गत हर एक अनुभव करते होंगे कैसे निर्विकल्प स्थिति रहती है। क्योंकि जब से देह अभिमान शुरू हुआ, बॉडी कॉन्शियस द्वापर युग से प्रारंभ होते ही विकल्पों की लाइन लग गई। संकल्प जो भी उठे वो विकल्प बन गए, बुरे संकल्प बन गए, कोई न कोई विकारों के वशीभूत संकल्प को ही विकल्प कहा जाता है। आत्मा संकल्प के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि सृष्टि ही कल्प ही संकल्प के आधार से बना है। पूरा कल्प जो है, जिस कल्प के अंदर हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं, इस कल्प को भी संकल्प से ही सिंचित किया गया है। तो आत्मा, जिसकी चैतन्य शक्ति मन है, और मन का पहला कार्य है संकल्प रचना, कुछ न कुछ सोचता जरूर है। आप लोगों ने हमारी क्लासेज में सुना होगा, एक दिन इसी आंगन के अंदर, मैं छोटा था तो तल्ले पर ऐसे मैं बैठा था शांति से, तो हमारे जगदीश भाई जी उस समय पैदल कर रहे थे इस आंगन में, इधर से उधर पैदल में बार बार आते जाते थे, और मैं बहुत गुमसुम ऐसे शांत बैठा था। तो अचानक वो मेरे सामने खड़े हो गए और कहते हैं, राजू तुम क्या सोच रहा है? तो मेरे मुख से निकला, भाई साहब कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इस कुछ नहीं के शब्द को उन्होंने, बुद्धि बहुत विशाल थी ना जगदीश भाई जी ने, फिर कुछ नहीं पर मेरा आधा घंटा क्लास कराया। कुछ नहीं ऐसा कभी अगर ब्रेन ठीक है और आत्मा इस शरीर के अंदर है, तो ऐसा कोई संकल्प, ऐसा कोई समय नहीं होता जिसमें वो कुछ सोच न रही हो। हो सकता है आपका अटेंशन न हो, वो अलग बात है, लेकिन कुछ न कुछ उसकी मशीनरी में संकल्प चलते ही रहते हैं। निट संकल्प अवस्था तो परमधाम में हो सकती है, क्योंकि वहां पर कोई संकल्प रचने की जरूरत नहीं है, और वो बाजा भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है जिसके अंदर आत्मा हो, वो अपने स्वरूप में ही है, परमधाम घर में निज स्वरूप में स्थित है, इसलिए वहां कोई संकल्प नहीं होता। लेकिन जब वो इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आती है, तो शरीर रूपी बाजा मिलते ही उसके संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। तो संकल्प के बिना तो आप कोई भी सेकंड रह ही नहीं सकते। संकल्प को शून्य बनाया नहीं जाता। कोई हठ योगी कहे मैं समाधि ले लूं तो कितने समय तक रह सकता है? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बिल्कुल समाधि में चला जाए, संकल्प को शून्य की तरफ ले जाए। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं उस शून्य से, संकल्प को शांत करने से, बंद कर देने से कोई भी प्राप्ति नहीं होती। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, और उस संकल्प की शक्ति से तो आप कुछ भी कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। ब्रह्मा ने संकल्प से नई सृष्टि की रचना कर दी। ये सृष्टि कैसे बन गई? ब्रह्मा बाबा के संकल्प से ही तो बनी है। मुख की संतान तो बहुत कम है, डायरेक्ट जिन्होंने सुना वो तो उस समय बाबा के समय शायद 1 लाख भी नहीं थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो बाबा ने साकार में संकल्प रचे, बच्चों का आवाहन किया, आज कितने लाखों बच्चे देश विदेश में आ गए, निकल आए। संकल्प की रचना है ना। तो संकल्प से तो बहुत कुछ कार्य संभव है, हो सकते हैं, लेकिन संकल्प पर बहुत अटेंशन का पहरा चाहिए, नहीं तो संकल्प कभी भी, जब गति को तीव्रता में आ जाते हैं, संकल्प बहुत फास्ट चलने लगते हैं, तो बाबा ने आज वरदान में कहा कुछ न कुछ दाग लग जाते हैं। तेज भाव से, संकल्पों के तेज भाव से कोई न कोई गलत बोल कर्म हो जाते, संस्कार उसी अनुसार अपना काम करना शुरू कर देते, इसलिए वो संकल्प वो विकल्प का रूप ले लेता है जब बहुत सारे प्रश्नों में आत्मा उलझ जाती है। मान लो कोई हमारे सामने कोई ऐसा छोटा मोटा पेपर आ गया, कोई ने कुछ मेरे को कह दिया, मेरी बात को कट कर दिया, मेरा डिसरिगार्ड कर दिया, कोई कारण से कोई बात आपस में संगठन में हो गई और हमने उसको बहुत अंदर लेकर के गहरे चले गए, उसके सोचने लगे इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कभी इसके साथ ऐसा व्यवहार किया ही नहीं था, और संकल्प चलने लगे। फिर उसका पास्ट प्रेजेंट जो भी उसकी कमी कमजोरी हैं, जो उसके अंदर संस्कार हैं, वो सब संकल्प के अंदर दाग लगाने लगे, प्रकट होने लगे, और वो हो गया विकल्प। वो विकल्प बन गया और उस विकल्प का फिर विकर्म हो जाता। इसलिए बाबा अपने बच्चों को वर्तमान समय व्यर्थ संकल्पों पर बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। संकल्प की गति को चेक करते करते जो संकल्प मेरे काम के नहीं है, जिस संकल्पों से मेरा कोई भी फायदा नहीं है, लेना देना नहीं है, उन संकल्पों से मुझे अपने आप को बचाना है, और इसके लिए अपने संकल्पों को कुछ न कुछ अच्छा होमवर्क देना है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं सवेरे सवेरे जैसे दैनिक दिनचर्या के प्रोग्राम को सेट किया जाता है, ऐसे ही अपने संकल्पों की दिनचर्या को सेट करो, बजट बनाओ उसका, पूरे दिन में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। हमारी दीदी मनमोहिनी जो इस स्थान पर बहुत समय रही हैं, मुख्य प्रशासिका के रूप में मम्मा के बाद उन्होंने स्थान संभाला, लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन बाबा की नंबर वन स्टूडेंट थी, और उन्होंने अपनी एक निजी डायरी बनाई। उस डायरी में रोज आज के दिन इस समय इससे मिलना है, ये करना है, इससे बात करनी है, यहाँ जाना है, ये प्रोग्राम है, पूरा दिन की अमृत वेले से रात्रि तक की रोज की दिनचर्या उनकी डायरी में लिखी होती थी। योग कितना समय करना है, कैसी स्थिति में करना, वो भी अपना प्रोग्राम बना लेते थे। हम सभी भी अपने इस वैल्यूबल संकल्प शक्ति को पहचाने, क्योंकि बहुत कंप्लेन है इसकी, ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है अधिक सोचने की। कोई कुछ बोल दे, कुछ हो जाए जो मेरे मन पसंद न हो, ये देखो संकल्पों की क्यों कितनी फास्ट चलती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किसने बोल दिया। जैसे स्टूडेंट के सामने अगर पेपर आता है और पेपर पढ़ते ही उसके मन में अगर अनेक प्रकार के प्रश्न उठ जाए, किसने निकाला, कहाँ से निकाला है, तो पढ़ाया ही नहीं गया, उलझ जाए, पेपर देखते ही घबरा जाए, तो क्या होगा, पास होगा। ऐसे कई बाबा के बच्चे कोई भी छोटी मोटी बात आती है फटाफट प्रश्नों की लाइन लग जाती, क्यों हुआ, क्यों आज मुझे क्लास में बहन जी ने प्यार से बात नहीं की, आज मुझे दृष्टि भी नहीं दी, पता नहीं इनके अंदर कुछ किसी ने भर तो नहीं दिया, कौन सी बीमारी है ये अनुमान की बीमारी, बहुत जल्दी अनुमान लगा लेते। कोई भी बात है अगर एक को प्यार से देखा, बात किया और दूसरे को नहीं देखा, बस उसका मन अंदर अंदर अपसेट हो गया, उसके संकल्पों की क्यों लग गई। अब उस संकल्पों को जब तक रोक पाए उसके लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, ज्ञान और योग की, नहीं तो संकल्प पे बहुत परेशान करते हैं, नींद पिटा देते हैं, टेंशन पैदा कर देते हैं, बीपी बढ़ जाता है, और कईयों का तो शुगर बहुत हाई हो जाता है, अधिक सोचने की ही बीमारी। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को, बाबा कहता है जैसे मैं असोचता हूं ऐसे असोचता बन जाओ, माना व्यर्थ नहीं सोचो। दादी जानकी जी का एक शब्द याद होगा आपको, कहती थी अचानक एक दिन मैं बैठा था, कहती है मैं कुछ सुनाने लगा समाचार, क्यों पत्र मेरे पास ही सारे आते, पढ़ना पड़ता। तो मैंने कहा दादी ऐसा कुछ इनको ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मेरे को ऐसे दृष्टि देते थे, डोंट थिंक, डोंट थिंक। मैंने कहा दादी डोंट थिंक कैसे हो सकता है, सोचना तो पड़ेगा ना, कोई ऐसी बात है तो बोलना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। डोंट थिंक बहुत अथॉरिटी से, डोंट थिंक, सोचना ही नहीं, व्यर्थ नहीं सोचना है। बहुत अटेंशन दादियों का था, बातें होती हैं। हमारी बड़ी दादी कभी कभी कहती थी कोई छोटी छोटी बातें लेकर के आते हैं, ये गिमे ऐसा हुआ, फलाना ऐसा करता, वो ऐसा करता। तो दादी कहती थी तुम यहाँ कीचड़ा उठाने आए हो क्या, अच्छी चीजें नहीं दिखाई देती। 90% जो अच्छा हो रहा उस पर नजर नहीं जाती, जो 5-10% कुछ गलत हो रहा उसको नोट कर रहे हो। ये बहुत गलत आदत है, इस आदत से बचो। इस अनुमान की बीमारी से, अधिक सोचने की बीमारी से कई प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। शारीरिक मानसिक रोग जो है उनका मूल कारण है अधिक सोचना। और सोचने को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने इतना हम सबको होमवर्क दिए हैं। मैं कभी कभी अपने आप को कहता हूं बाबा मुझे बहुत भाग्यशाली आपने बनाया है, जो अमृत वेले से रात तक मुझे ज्ञान को ही सोचना और कोई सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये ड्यूटी ऐसी दे दी है, क्या भेजना है, क्या लिखना है, क्या कहना है, क्या पत्र देना है, उत्तर प्रश्न उत्तर कैसे बनाने हैं, वरदान कैसे निकालने हैं, ये कहना वो करना, सारा दिन यही बुद्धि चलती। बाकी क्या हो रहा है, इधर कौन कर रहा है, उधर कौन कर रहा है, मेरे को बाहर से समाचार आता है कैसा हो रहा है, यहाँ का नहीं पता चलता है, यहाँ कोई आता ही नहीं मिलने के लिए, बात करने के लिए, क्यों मैं इतना बिजी हूं अपने आप में। माया से बचना है तो अपने आप को बिजी कर दो। व्यर्थ से बचने का सबसे अच्छा साधन है जितना हो सके, अगर मान लो दूसरे काम नहीं है, बाबा की इतनी अच्छी मुरलियां हैं, क्लासेज हैं, पढ़ो सुनो लिखो, कुछ अच्छा अभ्यास करो जो मन बिजी हो जाए। खाली मन तो शैतान का डेरा, कहते खाली घर में तो भूत ही रहते हैं। अगर इसको खाली छोड़ दिया, कुछ अच्छा होमवर्क नहीं दिया, तो कुछ न कुछ व्यर्थ इधर उधर के खुराफात के संकल्प आएंगे, ये ऐसा करता वो ऐसा करता, फिर कोई सुना देगा, उस पर विश्वास अगर हो गया, सुन लिया, हाँ में हाँ मिला दी, तो पाप की गठरी भरती गई। उसने सुनाया, किस भाव से सुनाया, कई बार ईर्ष्या के वश एक दूसरे की बहुत ग्लानी लोग करते हैं, है कुछ नहीं लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके, जेलसी के कारण, ईर्ष्या के कारण ये आगे बढ़ रही है, इसका नाम हो रहा है, इसकी सेवाएं बढ़ रही हैं, इसको बड़े लोग बहुत पूछ रहे हैं कैसे इसको मैं खींच लूं पीछे। ईर्ष्या के बस उसकी बातें इधर से उधर वातावरण में फैला करके, हो सकता है किसी की थोड़ी मोटी कमी कमजोरी हो, है संस्कार तो सबके अंदर है, और वो उस संस्कार को खत्म करने के लिए मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, वो छोड़ना चाहता है, उसके लिए योग करता है, अटेंशन देता है, वो परवश है उस संस्कार के, लेकिन देखने वाला उस बात को देख करके सुन करके वातावरण में अगर बात को फैला देता है, तो बाबा कहता है करने वाले से भी वातावरण को खराब करने वाला सबसे बड़ा दोषी है, सबसे बड़ा पाप उसके ऊपर चढ़ता है। जिसने कोई की कमी कमजोरी को देखा और देखने के बाद उसको अंदर समाया नहीं, कई बार समाने से भी अंदर अंदर चलता रहता है, समाप्त नहीं होता। सागर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो सब चीजें अंदर लेता है, समाता है, लेकिन अंदर नहीं रखता है, क्या करता है, साइड कर देता है, किनारे लगा देता है। कीचड़ा कितना भी डालो आप, कितनी भी चीजें उसके अंदर डाल दो, अंदर चली जाएंगी, आप कहेंगे खत्म हो गई, लेकिन वो कभी अंदर नहीं रखता, वो अपने साइड कर देता है उसको। अंदर कोई गोताखोर अंदर जाकर के मिले कुछ लेना चाहे तो वहां से रतन ही उसको मिलते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को यही एक प्रैक्टिस कराते हैं, ये मेरे बच्चे मास्टर सागर बनो, और मास्टर सागर बन करके कोई की व्यर्थ बातें अगर कोई सुनाता है, सुनते हो देखते हो, तो उसको वायुमंडल में नहीं फैलाओ, पहले अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो। अंदर अंदर लेके उसको समाप्त करो, ऐसे नहीं अंदर अंदर फिर और भी उछलती रहे बातें, कभी ना कभी फिर विस्फोट हो जाएगा, ध्यान देना। कई लोग रख लेते अंदर और जब समय आता है तो अंदर से सब कुछ बाहर कर देते। तो इसलिए अगर हम व्यर्थ संकल्पों की क्यू को समाप्त करना चाहते हैं, उसके तेज बहाव को रोक करके हम निर्विकल्प स्थिति बनाना चाहते हैं, निर्संकल्प स्थिति नहीं बनेगी, ध्यान देना। संकल्प तो कुछ न कुछ चलाने चाहिए, क्योंकि संकल्प एक इतनी अच्छी शक्ति है, इसको भक्ति मार्ग में कहा है अंतर मन वाहन, अंतःवाहक शरीर। अंतःवाहक शरीर क्या है, कभी विचार किया है? भक्ति का शब्द है, बाबा भी कई बार यूज कर रहे हैं। बच्चे अंतःवाहक शरीर से सैर करने का अभ्यास करो, अंतःवाहक शरीर से अपने भक्तों के पास पहुंच करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करो, अंतःवाहक शरीर से किसी के पास भी जा करके संदेश दे करके आ जाओ। अगर संकल्प हमारे कंट्रोल में है, संपूर्णता की स्टेज में है, जरा भी व्यर्थ की लीकेज संकल्प में नहीं है, बहुत शक्तिशाली पवित्र और शुद्ध संकल्प है, तो वो पवित्र और शुद्ध संकल्प आत्मा के लिए वाहन बन जाते हैं, आत्मा का वाहन, शरीर का वाहन नहीं है वो, आत्मा का। और आत्मा उसी शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से, यहां पर शरीर यहां है, बैठा यहां है, लेकिन पूरे वायुमंडल में जहां पर भी जो पुकार रहा है, जो याद कर रहा है, जो जिस भावना से भगवान को याद कर रहा है, उस आत्मा के द्वारा उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है और ये सेवा करने का वर्तमान समय यही समय है, क्योंकि अंतिम समय में बाबा कह रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अचानक ऐसे सीन दिखाई बाबा ने जो कुछ नहीं किया जा सकता, बैठ जाओ एक जगह पर। और ऐसे समय पर सेवा रही हुई है वो पूरी करनी है, जो इतने दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, पुकार रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं, इन आत्माओं के सहारे दाता कौन? बाबा कहता मेरे बच्चे हैं। आप बच्चे एकांत में बैठ करके अपनी मनसा को बहुत पवित्र शुद्ध बना करके इस वाहन से उस स्थान तक, उस व्यक्ति तक पहुंचने का अभ्यास करो। बैठे ही हैं, जाते कहीं नहीं है, लेकिन एक शुद्ध संकल्प इतनी बड़ी शक्ति है जिसको बाबा कहते हैं ये रॉकेट से भी बहुत फास्ट है। एक सेकेंड में आप लंदन और अमेरिका के दृश्य को इमर्ज कर सकते हो, एक सेकेंड में आप अपने सूक्ष्म वतन, मूल वतन की यात्रा कर रहे हो। बाबा एक सेकेंड में परम धाम से यहां उतर आता है, तो उसको टाइम नहीं ले, सेकेंड तो हम कहते हैं, लेकिन इसकी स्पीड पर हमारा ये कंट्रोल है कि इधर उधर न जाए, कहीं साइड सीन्स में न जाए। वैसे भी अगर कोई को अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है, टाइम देखता है कि टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत कम टाइम है, हमें समय पर पहुंचना है, कैसी भी सीन सामने आए, कैसी भी रुकावटें सामने आए, कोई भी बातें आ जाएं, वो उनकी परवाह नहीं करता, मुझे मंजिल पर पहुंचना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे प्लेन पकड़ना है, वो अपनी गाड़ी पर ध्यान देता है, भागने की कोशिश करता है, जल्दी जाए, जल्दी जाए। इसलिए हम सबको एक ध्यान देना है, वर्तमान समय कोई भी प्रकार की बातें आए और आएंगी, क्यों आएंगी? क्योंकि अंतिम समय ही सबके हिसाब किताब चुकतु होने का समय है। सृष्टि नाटक की अंतिम घड़ियां चल रही हैं और इस अंतिम घड़ियों में हर आत्मा ने जो 84 जन्म आत्माओं के साथ पार्ट प्ले किया है, और विशेष करके जब द्वापर युग से देहमान के कारण विकर्म किए, पाप कर्म किए, लोगों को सताया है, परेशान किया है, उन सब का हिसाब चुकतु होने का ये समय अंतिम समय है। दो रास्ते हैं चुकतु करने के, एक बाबा ने हम बच्चों को सहज रास्ता दिखाया, योग का बल। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की शक्तियों को ग्रहण करते हैं, उस हिसाब किताब को सूली से कांटा बना करके चुकतु कर देते हैं। आता है, सबके सामने आता है, लेकिन वो सूली जैसी बात, बहुत बड़ी बात क्या हो जाती, छोटे रूप में, कुछ नहीं है, पार हो गए, कांटे की तरह लगा, पार हो गए। दूसरा रास्ता है, अगर हमने योग पर ध्यान नहीं दिया, अपने विकर्मों को विनाश करने पर ध्यान नहीं दिया, तो बाबा कहता फिर तो धर्मराज ही है, वो तो हिसाब किताब लेगा ही। और बिना चुकतू किए हुए मेरे घर वापस कोई भी आत्मा नहीं आ सकती। जो कुछ बनाया 84 जन्म में आत्माओं ने खेल खेल करके, अंत समय है सबको स्वच्छ पावन बना करके फिर मैं अपने साथ ले जाऊंगा जब वापस घर चलने का समय है। तो हमें एक तरफ चुकतू करने का टेंशन है कि हमारा जो हिसाब किताब था ज्ञान और योग बल से वो चुकतू हो जाए, और दूसरी तरफ अगर चलते चलते कमजोर संकल्प, नेगेटिव व्यर्थ संकल्प से हमने किसी आत्मा के प्रति बहुत कुछ सोच लिया, व्यर्थ सोच लिया, उसको गिराने की सोच लिया, उसके साथ बदला लेने की भावना रखी, उसके बाद अनुमान लगाया, ईर्ष्या रखी, तो और नया हिसाब किताब न बन जाए, बहुत अटेंशन देना है। जब एक तरफ हम मेहनत कर रहे हैं बाबा के साथ अमृत वेले उठ करके बातें करें, शक्ति लें, सकाश लें, मुरलियों की स्टडी करें, एकांतवास करें, चुकतू करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक बहुत अच्छी बात मम्मा की मैं सुनाता हूं। मम्मा एक बात कहती थी, बाबा के बच्चे 6 मास फुल अटेंशन रखते हैं, 6 मास 9 मास बाबा ने कहा है मुझे ये करना है, हर प्रकार से ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाएंगे, मुरली स्टडी करेंगे, अच्छा संग करेंगे, एकांतवास करेंगे, बहुत अटेंशन देंगे हर बात में, व्यर्थ नहीं सोचना, अंतर्मुखी रहना, मौन में रहना। लेकिन एक दिन कोई बात ऐसी घट गई जो उनके पसंद नहीं थी, वो 6 मास की हुई कमाई 5 मिनट में गुस्सा आया, क्रोध आया, वो सारी की सारी चौपट हो गई, खत्म, जोश में आ गए, बोल दिया, कटु वचन निकल गया, सारा चार्ट रिकॉर्ड जो इतना अच्छा था वो 5-10 मिनट के गुस्से ने वो सारे पर पानी फेर दिया। जैसे बाबा कहते हैं काम विकार जो है हमारी सारी की कमाई को नष्ट कर देता है। हम इतने समय से पवित्रता का व्रत लेकर के चलते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल से, और अचानक कोई ऐसा तूफान आया, ऐसा संग मिला, और अगर हमारी ये काम की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रही और हम उत्तेजित हो गए, वासनाओं के अधीन हो गए, तो सारे ब्राह्मण जीवन की कमाई चौपट, खत्म हो गई। कंट्रोल पावर, कंट्रोलिंग पावर किस पर कंट्रोल? केवल संकल्प पर कंट्रोल, केवल संकल्प पर कंट्रोल। संकल्प एक इतनी बड़ी शक्ति है, अगर कोई ने कोट कंट्रोल कर लिया तो इंद्रियां क्या है, तो जड़ है, ये थोड़ी उत्तेजित हो जाएंगी। उत्तेजित तब होती है जब आत्मा की जो पहली मुख्य शक्ति संकल्प शक्ति है, उस संकल्प शक्ति और मन के साथ कर्म इंद्रियों का बहुत घनिष्ठ कनेक्शन। संकल्प शक्ति अगर कंट्रोल में है तो इंद्रिया एकदम शीतल है, शांत है, ना उत्तेजनाएं आएंगी, ना आवेग आएगा, ना आवेश आएगा। मैं बहुत इस बात पर अटेंशन देता हूं, आप सब सोचना, हम बाबा के बच्चे बने हैं, बातें तो आएंगी, संगठन है, परिवार है, संस्कार है, भिन्नताएं हैं, एकता तो नहीं है, ऐसे सब एक जैसे तो नहीं है। कोई बहुत अच्छे योगी हैं, तपस्वी हैं, टेंशन रखते हैं, और कोई ऐसे कमजोर संस्कार वाले रोज परेशान करते हैं। हम सबको अटेंशन दे करके अपने आप को कभी भी उत्तेजित होने नहीं देना। आवेश और आवेग ये दो बातें हमारी सब शक्तियों को की कमाई को खत्म कर रही हैं। एक आवेग आता वेग अंदर का, संकल्पों का तूफान, वो सारी शक्ति को नष्ट कर देता है, की कमाई चौपट कर देता है। और आवेश में अगर गुस्से में कुछ बोल गए तो कितने संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए सभी ध्यान देना, अगर हमें निर्विकल्प स्थिति बनानी है तो संकल्प शक्ति को बहुत कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। कंट्रोल में रखना माना ऐसे नहीं उसको दबा करके मारना है, उसको दबाना है। कई लोग सोचते हैं इसको दबा दो, इसको ये करो, बाबा की तो हट क्रियाएं नहीं है। इसको अच्छा अच्छा भोजन दो। अगर मन घोड़ा है, सुना होगा मैंने कई क्लासेज में बात सुनाई है कि अगर मन घोड़ा है और घोड़े की कोई प्यार से पालना करता है, उसको अच्छी तरह से चारा खाना खिलाता है, उस पर हाथ फेरता है, उसको नहलाता धुलाता है, प्यार करता है, तो वो घोड़ा भी बहुत मालिक का आज्ञाकारी बन जाता है। एक जगह में गया था विदेश में, वहां पर एक भाई ने 2 घोड़े पाले थे और बहुत बड़ा था वो भाई हमारा, बहुत लंबा चौड़ा ऑस्ट्रेलियन था, और उसके घोड़े बहुत छोटे छोटे थे। तो जब मैं उसके फार्म हाउस में गया, मेरे को पिकनिक के लिए वहां ले गए, तो सबसे पहले मेरे को पहले उसने वेलकम किया, फूल वूल दिए, फिर कहता है मेरे हॉर्स कहाँ है, उनको बुलाओ, वो अपने भाई साहब को वेलकम करेंगे। और उसने आवाज दी जोर से, और कितनी दूर खड़े हुए चारा खा रहे थे उधर घास खा रहे, आए दौड़ करके, और आते ही ऐसे ऐसे वेलकम, नया तुमने तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है, तुमने क्यों उनको पाला है, इस पर सवारी तो तुम कर नहीं सकता है, बैठेगा तो ये बैठ जाएंगे। तो कहता है मैं इसके लिए नहीं पाला है, बाबा कहता है मन घोड़ा है, लोग कहते हैं मन घोड़ा है, वो कंट्रोल में नहीं रहता। अरे वो हमारा है और ये पशु फिर भी दूसरे हैं, और पशु रूपी घोड़ा हमारे कंट्रोल में अगर रहता है तो मन रूपी घोड़ा क्यों नहीं रहेगा, मैं उसको कंट्रोल रखने के लिए करता हूं। आप सोचना कितना अटेंशन देने की जरूरत है, अगर घोड़ा है तो लगाम तो है कि नहीं है लगाम, बिना लगाम के अगर घोड़े पर चढ़ गए तो गिराएगा, लगाम हाथ में रहनी चाहिए कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसने कुछ देख लिया इधर उधर साइड सीन तो घोड़ा आपको गिरा देगा, इसलिए उसको पट्टी लगाई जाती है। रेस के घोड़े को जब दौड़ाना होता है तो दोनों आंख की ऐसे पट्टी लगा के दौड़ाते, देखा होगा रेस के घोड़े क्यों लगाते हैं, अगर साइड में कहीं देख लिया अच्छी घास या कुछ भी तो आपको गिरा देगा, मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा। तो क्या आपने अपने मन को पट्टी लगाई है ऐसे कि नहीं लगाई है कि ये नहीं देखना है, बाबा ने मना किया ये नहीं देखना, ये व्यर्थ है, ये नेगेटिव है, ये क्यों मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं, मैं क्यों देखूं। अगर व्यर्थ को देखने की, साइड सीन को देखने की आपने आंख बंद कर ली, कोई कितना भी बड़ा हो, अनुभवी हो, पुराना हो, बहुत अनन्य बाबा का बच्चा हो, और लेकिन कोई गलती कर रहा है तो बाबा कहता ऊपर बस है उसको मत देखो, ऐसे नहीं ये भी कर रहा है अब मेरा क्या होगा, इससे हो गया तो मैं भी बचूंगा कैसे। अरे भाई उसके हिसाब किताब अपने हैं, उसके संस्कार अपने हैं, उसके साथ अपना पार्ट है। आज कई कन्याएं ना हमारे पास समर्पित, अभी आजकल बहुत कम होती, ब्रह्मा कुमारी बनना उनको ऐसा लगता पता नहीं क्या होगा, नौकरी करेंगे पवित्र रहेंगे लेकिन सरेंडर होकर के, क्यों क्या हुआ, फलानी बहन चली गई, उसके साथ ऐसे हो गया, उसके साथ, अरे किसको देख रहे हो, कमजोरों को देख रहे हैं। और जो महारथी हैं, जो बैठे हैं, जिन्होंने नंबर वन लिया है, वो वित्त कुमारियां हैं ना, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, हमारी दादियां देखो कैसे नंबर वन हैं, तो ना उन्होंने किसी को देखा क्या, बाबा को देखा। तो अगर हम केवल बाबा को देख करके चलेंगे, कमजोर को देखना ही नहीं है, कोई कितना भी बड़ा और कोई गलत काम कर रहा है वो परवश है, वो अधीन है, उसके आगे संस्कार हैं, उसे मुझे नहीं देखना है, वो अपना हिसाब किताब चुप तो कर रहा है। अगर ये बात ध्यान पर रहे, इसको हम पट्टी लगा करके इसको नहीं देखना है, बाबा मुझे क्या बनाना चाहता है, क्या किस लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, अगर उस पर हमारा ध्यान होगा तो हम व्यर्थ संकल्पों के बहाव को रोक सकते हैं, और व्यर्थ संकल्पों का बहाव अगर रुक गया तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी, कोई विकल्प नहीं आते, क्यों आएंगे, उसका पता पता कब चलता है, जब सोते हो ना सपनों में आता है, इधर उधर के स्वप्न आते हैं, गंदे स्वप्न आने लगते हैं, क्योंकि हमारा अपने संकल्पों पर ध्यान नहीं है। और संकल्पों की लगाम श्रीमत, लगाम है श्रीमत, श्रीमत पर अटेंशन नहीं है। अगर किसी आत्मा ने श्रीमत को अच्छी तरह से समझ लिया है कि बाबा ने क्या श्रीमत दी है, बाबा की एक श्रीमत सुनाता हूं, जब बाबा गांधी जी के तीन बंदर वाला चित्र देखता था तो कहता था बच्चे ये बंदरों को क्यों कहा है, हियर नो इविल सी नो इविल टॉक नो इविल, बच्चों का बना दो। उन्होंने, बाबा ने अपनी बच्ची नल्ली बहन का बनवा दिया, वो चित्र बनवाया और तीनों चीजें उसके तीन फोटो बना दिया, मुख पर, आंख पर, कान पर उंगली। फिर अव्यक्त बाबा ने कहा नहीं दो बातें और इसमें ऐड करो, थिंक नो इविल डू नो इविल इसमें ऐड नहीं किया गया, सी नो इविल टॉक नो इविल हियर नो इविल, लेकिन थिंक जो सोच रहे हो उस पर ध्यान ही नहीं है, वो बीज है और बीज पर अटेंशन नहीं है तो वृक्ष कैसे शुद्ध हो जाएगा। बीज अगर दागी है, बीज अगर कमजोर है, बीज अगर खाली पोला है, आप उसको बो दो वृक्ष बनेगा क्या, लेकिन बीज अगर शक्तिशाली है आपका पौधा अच्छा होगा, उसमें फल अच्छे आएंगे, वृद्धि को प्राप्त होगा। तो बाबा हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं, बच्चे संकल्प एक आपका बीज है और इस बीज रूपी संकल्प पर इतना ध्यान दो इसमें कोई भी कीड़ा न लग जाए। सबसे बड़ा कीड़ा कौन सा जानते हो? जैसे उसमें दीमक लगती है ना, ऐसे कीड़ा इसमें भी लग जाता है, मैं। ये जो मैं शब्द है ना, बहुत खतरनाक है ब्राह्मणों के लिए। थोड़ा भी कुछ अच्छा कर देते हैं, बस मैंने किया, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। और मैं का घुन ऐसा खतरनाक है जो अंदर अंदर सारी की कमाई को खा करके खत्म कर देता है। व्यर्थ संकल्पों की मूल जड़ है मैं करता हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अनुभवी हूं, मैं बड़ा हूं, और इस मैं के कारण ही सारी अंदर की अभिमान जागृत रहता है। और अगर जरा भी कोई ने अपमान किया, बात हमारी कट कर दी, बस सोडा वाटर हो गया, उसका नशा खत्म, उमंग उत्साह खत्म, कि कोई वैल्यू हमारी नहीं है, हम तो इतना करते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने बहन जी को मकान बना के दिया, मैंने ये सब किया, लेकिन यहां कोई पूछता ही नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, वैल्यू नहीं करते। ये जो मैं आया, उस मैं ने व्यर्थ की क्यों लगा दी, और इतने व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वार्थ था, जब तक काम था तब तक तो बहुत अच्छी तरह से खातरी किया, रोज आगे बिठाया, रोज माला पहनाई, अभी तो पूछते ही नहीं। और ऐसे अहंकार वाले, अभिमान वाले व्यक्ति क्या स्थिति बना पाएंगे? वो तो कैंसर की बीमारी है उनकी, बहुत खतरनाक बीमारी है जिसको पता नहीं चलता है, और लास्ट स्टेज पर आके पता चलता है ऐसी बीमारी हो गई इसको। फिर बहने कितना भी प्यार करें, कहेंगे अभी तो मेरी महिमा करते हैं, मेरे को चढ़ाते हैं, ये करते हैं, फिर सुधरने की नाम नहीं लेता। इसलिए दो बीमारियों से बाबा बचाता है बच्चे। संकल्प शक्ति अगर निराशा की तरफ चली गई तो हार्ट की बीमारी हो जाएगी, दिल शिकस्त, उमंग उत्साह खत्म, मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, लोगों को इतने सब चांस मिलते हैं, ये भाषण अच्छा करते, कोर्स कराते, प्रवचन करते, ये राजयोग शिविर कराते, मुझे कहां चांस मिलता है। सोडा वाटर, एकदम उदास, निराश, खुशी गायब। बाबा कहता है इसका उमंग उत्साह का ब्लड है ना जाम हो गया, इसकी आर्टरी ब्लॉक हो गई, हार्ट अटैक हो जाएगा इसको। तो ब्राह्मण जीवन में कभी भी निराशा नहीं आनी। अरे बाबा ने इतना विशेष महान बनाया है, उसकी दृष्टि पड़ी है, उसने चुना है आपको, उसने अपना बना करके कितना योग्य बना दिया, समझदार बना दिया। कोई भी सेवाएं नहीं है, मनसा सेवा तो करो, अपने शुद्ध पवित्र संकल्प रक्ष करके एक ऐसा आभा मंडल बना दो, ऐसा ऊर्जा का केंद्र बना दो मन को, जो चारों तरफ उसकी किरणें ऐसे फैलती हुई नजर आए। लेकिन वो तभी हो सकता है जब संकल्प हमारे कंट्रोल में हो, जब बहुत शुद्ध और पवित्र संकल्प की रचना हम करना जान जाए। अगर हमारा संग अच्छा है, हमारा खान पान अच्छा है, हमारा अध्ययन अच्छा है, हम सब बातों पर अटेंशन दे रहे हैं, श्रीमत की लगाम है, तो ये संकल्प शक्ति मन को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर व्यर्थ संग भी मिल गया, सबसे पहली शिक्षा जो मुझे मिली थी मधुबन में यही मिली थी। मैं आया था, छोटा था, 16 साल की उम्र में समर्पित हो गया, समर्पित तो कर लिया, रख लिया, क्योंकि मैं बहुत सेवाएं करने में, हर बात में हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सेवा से समर्पित होने का चांस मिला। दीदी एक दिन बुला करके, ऐसे बुला करके बिठाया मेरे को बाजू में, कहती एक बात का अटेंशन रखना। मैंने कहा दीदी जो कहेंगे। कहती संघ की संभाल कर, संघ की संभाल। मेरा क्वेश्चन उठ गया वहां, दीदी संघ यहां भी खराब है क्या? यहां भी संघ की संभाल मुझे करनी है क्या? भाई हम स्कूल का संघ, बच्चों का, स्कूल के लड़कों का संघ छोड़ करके आ गए, जो बीड़ी पीने वाले थे, शराब पीने वाले थे, गुंडागर्दी करने वाले थे, मारपीट करने वाले थे, उनके संघ में था मैं भी, लेकिन उनके संघ से हम बच के यहां आ गए, और यहां आकर के भी यही शिक्षा मिली, संघ की संभाल करना। तो जब मेरे को देखा ये तो थोड़ा उलझ गया, मैं बोला नहीं कुछ भी, देख रहा था दीदी। कहती है देखो यहां पर दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है सेवा करके समर्पित हो गए हैं, लेकिन उनका अपनी उन्नति पर ध्यान नहीं है, वो अमृत वेले नहीं उठते हैं, वो मुरली क्लास नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं। तो यहां जो सफेद ड्रेस ले लिया, काम कर दिया, भोजन खा लिया, तो ये सफेद ड्रेस वाले नौकर हैं, इन नौकरों के संग में नहीं रहना। जिनका अपनी उन्नति पर ध्यान है, जो स्वचिंतन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, अमृत वेला करते हैं, कभी किसी की ग्लानी नहीं करते, पर चिंतन नहीं करते, पर दर्शन नहीं करते, ऐसे भी बाबा के बच्चे यहां हैं, उनका संग करना। उनके संग में रहोगे ना तो उसका रंग नहीं लगेगा, उसका अच्छा रंग लगेगा और उन्नति होगी। और व्यर्थ संग अगर कर लिया किसी व्यक्ति का, मान लो आपके क्लास में 10 लोग हैं, 10 लोग बड़े अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई की पर चिंतन नहीं करते, अपने योग किया, क्लास किया, सेवा किया, मस्त रहे, चलो उनके संग में बैठेगा तो उसको भी संग का रंग लगेगा, वैसे ही करने लगेगा। और कोई ऐसे हैं जो बैठ गए, अरे फलानी बहन ऐसे करती, वहां ऐसे चलता, वो सेंटर पैसे होता, वो सेंटर पैसे होता, और उनका भी बड़ा ग्रुप बन जाता है। हाँ, फिर क्या होता है? और शुरू कहां से करेंगे? शुरू करेंगे ज्ञान योग से और पहुंच जाएंगे जंगल में। और ऐसे के संग में गए तो क्या होगा? संग तारे को संग डुबोए। वो आत्मा कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकती। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो बाबा ने हमें मंत्र क्या दिया? स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर कोई भी पर चिंतन कर रहा है, पर दर्शन कर रहा है, तो बाबा कहता है इसका चिंतन और दर्शन ही बता रहा है ये ब्राह्मण जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए अपनी अगर निर्विकल्प स्थिति बनानी है तो अटेंशन देना, ऐसे संग में मुझे नहीं बैठना है, कुछ भी कोई हो, कितने भी अच्छे मित्र हो। इसलिए एक जगदीश भाई का एक टोटका याद रखना, उन्होंने एक लेख लिखा, उन्होंने लिखा हे भगवान तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, दुश्मनों से मैं निपट लूंगा। समझे कुमारियां, समझ रही हो बात? अगर कोई ऐसे दोस्त बना लिए तो गए काम से फिर। इसलिए दोस्त जो है ना जरूरी होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन अगर पर चिंतन पर दर्शन वाले कोई दोस्त हैं तो वो दोस्त आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। और दुश्मन तो ध्यान खिंचवाते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, हमारा फुल अटेंशन रहता है। अगर कोई हमारा निंदा करने वाला होता है, भाई हमको बहुत संभल के चलना है, कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए जो लोग हमारे पर कुछ उंगली उठाएं, तो वो तो हमारे मित्र हैं। इसलिए कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, बाबा का ये स्लोगन रहा। हम सब बाबा के बच्चे, निंदा करने वालों से न डरें, उसमें हमारा अटेंशन रहेगा, हम सुधर करके रहेंगे। लेकिन अगर ऐसे कोई दोस्त हैं, मित्र बने हुए हैं जो हमारे गलत रास्ते की तरफ ले रहे हैं, बाबा की, परिवार की, मुरली की, कोई भी बात की, यज्ञ की ग्लानी करने के निमित्त हैं, तो वो हमारे दुश्मन ही हैं। उनसे संभल के रहना है, उनसे अपने आप को बचाना। क्या लेना देना है? यज्ञ में ऐसा हुआ, फलाने ऐसे करते, वो ऐसे करते, तेरा क्या जाता है? बाबा नहीं बैठा है क्या? इतना बड़ा यज्ञ है, इतने बच्चे हैं बाबा के, इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, बाबा की छत्र छाया नहीं है क्या? बाबा के निर्देशन से नहीं हो रहा? अगर कोई दो चार कर रहे हैं, वो अपना हिसाब किताब बना रहे हैं, अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देख करके, सोच करके, इधर उधर बता करके और अपनी मन की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं और संकल्पों की व्यर्थ की क्यों लगा रहे हैं, वही विकर्म है और वही विकल्प है। इसलिए किसी भी विकार के अधीन, केवल एक काम विकार के अधीन संकल्प को विकल्प नहीं कहा जाता, कोई भी विकार के अधीन व्यक्ति है तो वो विकल्प में जा रहा है। और ऐसे विकल्पों पर जीत प्राप्त करने वाले को आज बाबा ने वरदान में कहा ये आत्मा भाग्यवान आत्मा है, जिसने विकल्पों की क्यों को खत्म कर दिया। कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठाना है, अगर प्रश्नों से पार जाना है, प्रसन्न चित्त स्थिति रखनी है, तो सबसे अच्छी ढाल है ड्रामा की। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प इस पेपर को, इस परीक्षा को मैंने पास किया है, ये बातें हमारे सामने कई बार आई हैं और बाबा ने हमारे मस्तक पर एक तिलक दिया है, विजयी भव, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। ये बातें आई हैं, क्रास हो जाएंगे। मुझे सोच सोच करके अपना दिमाग गर्म नहीं करना, फुल स्टॉप, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, 3 गोली खाना रोज। दादी कहती 3 गोली खाओ, वो दवाइयों की गोली नहीं खाना, जरूरी है तो भले खाना, लेकिन एक धैर्यता, बहुत शांति से। कोई बात आई है, पेपर आया है, परीक्षा आई है, सेंटर पर भी कोई समस्या आई है, घर में कोई बात आई है, तुरंत एक्शन नहीं लेना, तुरंत नुकसान कर सकती है। धैर्यता से मन को शांत करके, धैर्यता से बुद्धि को स्वच्छ साफ बना करके निर्णय करना है। पहले परखो तो, पहले साफ होकर के, स्वच्छ होकर के, बाबा से शक्ति लेकर के। इसलिए दादियों ने क्या पाठ किया, जब भी उनसे कोई बात करने जाओ एक मिनट साइलेंस, बैठ जाओ फिर बोलेंगी, ऐसे नहीं बोलना शुरू कर देंगे, एक मिनट साइलेंस, प्लीज साइलेंस। तो साइलेंस क्या है, अंदर की मन की स्थिति धैर्यवत शांत, फिर जो बुद्धि निर्णय करेगी वो यथार्थ होगा। तो धैर्यता की गोली रोज खाना सवेरे सवेरे। और दूसरा प्रेममय व्यवहार। प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है जो कोई भी कार्य को, असंभव को भी संभव करा सकती है। डांट डपट करके, गुस्से में आकर के, जोश में आकर के अगर कोई काम कर भी देगा तो परवश होके करेगा, अच्छा नहीं होगा उसे। इसलिए कुछ भी है बहुत प्यार से प्रेम में व्यवहार करके उसको हम, उसकी दिल को जीत सकते हैं, उसको सहयोगी बना सकते हैं। इसलिए धैर्यता और प्रेम। और तीसरा जो हमारे यज्ञ का आज तक फाउंडेशन रहा है वो है विश्वास, फेथ। विश्वासघात करने वाले भी होते हैं लेकिन बाबा ने अपने बच्चों पर कभी उस वो नजर नहीं रखी, उन्होंने सदा हम बच्चों पर विश्वास रखा। आज जो इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, दादियों ने विश्वास रख करके अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी जवाबदारियां हम लोगों को समर्पित की, अर्पित कर दी, विश्वास था उनका। जब मैं आपको बताया, पता होगा टाइम हो रहा है मेरा, पत्र पुष्प मैं उनके नाम का लिखता, अभी तक भी उन्हीं के नाम, दादियों के नाम से लिखता हूं। 2003 के बाद दादी, बड़ी दादी, प्रकाशमयी दादी शरीर से अस्वस्थ होने लगी, उनके नाम वो लिखाती थी मुझे पत्र, स्पेशल बुला करके लिखवाती थी, ये लिखो ये लिखो ये लिखो। उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर किया और दादी बोलना बंद कर दिया, बोलती नहीं थी। तो एक दिन मैं अचानक दादी के पास गया, अपने दादी अभी आपका पत्र आपके नाम से जो मैं लिखता हूँ बंद कर रहा हूँ। कहती क्यों दादी, आप कुछ लिखाती नहीं हो, कब तक मैं प्रकाश मणि बन के लिखूंगा। तो कहती है, तेरे को तो बाबा ने, दादी ने वरदान दिया है, तुम बहुत अच्छा लिखता है, कोई को पता नहीं चलता है, तुम लिखता है, दादी लिखती है, ऐसे ऐसे कहके मेरे को बहुत आदर दिया, बहुत प्यार किया, बहुत अच्छा तुम लिखो लिखो जरूर लिखो, मेरे नाम से लिखो, मैं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, कोई बात होगी मैं जवाबदार हूँ। ठीक है, मैंने चालू रखा। फिर दादी अव्यक्त हो गई 2007 में, जानकी दादी आई। तो जानकी दादी के नाम से लिखने का मैंने कहा, दादी आप तो लिखाएंगे ना। नहीं नहीं, तुम तो लिख रहा ना, भले मेरा नाम लिखो। दादी कुछ तो लिखाओ ना आप, ऐसा कैसे मैं लिखता रहूं आपके नाम से। कहती अच्छा तुम मेरी क्लास से सुनता है ना। हमने कहा उसमें से जो पॉइंट अच्छे लगे तो लिख दिया। अब उनके पास जानकी दादी मेरे को बना दिया गया, बीके जानकी का नाम लिखने लगा दादी। लेकिन एक बात की बहुत एक्यूरेट, जानकी दादी बहुत एक्यूरेट थी, चाहे कहीं भी दुनिया के कोने में बैठी हूं। मैंने पत्र लिखा और तुरंत ईमेल किया, ईमेल जाते ही पहले नंबर में सब काम बंद करके उसको पढ़ करके मेरे को 5 मिनट 10 मिनट में जवाब आता था। मैंने पढ़ लिया, बहुत अच्छा है, अगर कोई बात और एडिशन करनी होती तो ये बात इसमें ऐड कर देना, आवाज में भर करके तुरंत जवाब आ जाता। लास्ट में मार्च में शरीर छोड़ा है, अप्रैल का पत्र पुष्प भी दादी से मैंने पास करा के भेजा, अप्रैल का भी, क्योंकि पत्र पुष्प बन जाता है 15-16 तारीख को, दादी ने 27 तारीख को शरीर छोड़ा। तो जब मैंने बनाया और भेजा तो दादी ने पढ़ा और पढ़ करके मेरे को जवाब दिया, कहता तुम मेरे पास आ सकते हो क्या। और मैं उस समय विजयवाड़ा में था, हमने दादी 2 दिन के बाद आऊंगा। 2 दिन के बाद चुप हो गई, शांत हो गई, उसके बाद मिलना नहीं हुआ, चली गई अचानक। लेकिन वो लास्ट तक भी दादी के अंदर ये था कि जो कुछ मैं लिखूं पढ़ेगी और हाँ जी करेगी। रत्नमय दादी तो पढ़ती भी नहीं है, लिखो तुम बहुत अच्छा लिखते रहो। तो मैं ये कह रहा हूं कि फेथ एक बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वास किसी पर अगर बड़ों का बैठ जाए कि जो करेगा बिल्कुल ठीक करेगा, हम सबको ऐसे विश्वास पात्र बनने की आवश्यकता है। हम बाबा के, बड़ों के, निमित्त आत्माओं के विश्वास पात्र बन जाएं। उनका इतना विश्वास हो कि इसको चाहे पैसा दे दो, चाहे कोई काम दे दो, चाहे किसी के साथ भेज दो, ये कभी भी कोई भी प्रकार से विकारों के विकल्पों के अधीन नहीं हो सकती। आत्मा बहुत अच्छी है, योग्य है। इस फेथ के आधार से आज यज्ञ इतना वृद्धि को विस्तार को पाया है, हम सभी भी ऐसे विश्वास पात्र बने। तो ये तीन गोली है, धैर्यता की, प्रेम की और विश्वास की। आप सब एक दूसरे पर विश्वास रखो, विश्वास से एक दूसरे को चलाओ, उनकी विशेषताओं को देखो और अपने आप को बहुत निश्चिंत बना करके, एक निर्विकल्प स्थिति किसको कहा जाता, कोई भी विकल्प ना आए, ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों में रमण करने का अभ्यास करो। ओके, ओम शांति।
Thank you.